पूज्य गुरुदेव के विचारों का यह एक संक्षिप्त अवलोकन है, जिसका विषय है महापुरुषों का चरित्र चिंतन भी कल्याणकारी होता है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि खुद को और अपने समाज को बेहतर बनाने के सभी साधनों में सत्संग यानी अच्छी संगति सबसे ज्यादा असरदार और सुविधाजनक है। तो सबसे पहली बात, सत्संग दो तरह का होता है और कमाल की बात यह है कि दोनों ही आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। एक तो है श्रेष्ठ लोगों का साथ, जिनकी संगत में आने से बड़े बड़े दुराचारी भी सुधर जाते हैं, और इसका असर ना बहुत तेज होता है। जैसे महात्मा गांधी के संपर्क में आकर कई विलासी लोग सच्चे जनसेवक बन गए। और दूसरा तरीका है अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, जो उतना ही फायदेमंद है। दूसरा पॉइंट यह है कि महान लोगों का सत्संग आप तब भी कर सकते हैं जब वो इस दुनिया में ना हों। कैसे? उनकी जीवनियां पढ़कर। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये आपके चरित्र को बनाने का एक सीधा रास्ता है। जरा सोचिए, रामायण में श्रीराम का आदर्श जीवन या फिर महाराणा प्रताप और शिवाजी की जीवनियां, इन्होंने लाखों लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया है। और आखिर में तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये सब शुरू कहाँ से होता है? जी हाँ, बचपन से। पूज्य गुरुदेव बिल्कुल साफ कहते हैं कि बच्चों की संगति ही उनके भविष्य की दिशा तय करती है। अच्छी देखरेख और भले लोगों की संगत में रहने वाले बच्चे सभ्य और सुशील बनते हैं। तो सार ये है कि अच्छी संगति, चाहे वो श्रेष्ठ व्यक्तियों की हो या उत्तम पुस्तकों की, चरित्र निर्माण और आत्म सुधार का सबसे सरल।
आज हम एक बहुत ही सरल से सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सिर्फ सही लोगों या सही विचारों के संपर्क में आने से हमारा जीवन सच में बदल सकता है?
हाँ, और ये सवाल बहुत गहरा है।
बिल्कुल। और पूज्य गुरुदेव के लेखन स्वाध्याय और सत्संग के चौथे अध्याय में इसी का जवाब छिपा है। वो कहते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल संभव है। तो चलिए आज इसी विचार की गहराई में उतरते हैं।
बिल्कुल। और ये सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति की बात नहीं है। पूज्य गुरुदेव का मानना था कि उनके विचार व्यक्तित्व, परिवार और समाज, मतलब तीनों स्तरों पर बदलाव ला सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये सत्संग का जो विचार है वो असल में काम कैसे करता है।
चलिए इसे खोलकर समझते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि खुद को बेहतर बनाने के जितने भी रास्ते हैं, उनमें सत्संग सबसे आसान और असरदार है।
हाँ।
उन्होंने इसे समझाने के लिए पारस पत्थर का उदाहरण दिया है, जो लोहे को छूकर सोना बना देता है। ये उदाहरण तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये थोड़ा कल्पना जैसा लगता है ना। क्या असल जिंदगी में इसके कोई सबूत हैं?
जरूर है। और यहीं पर पूज्य गुरुदेव ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं।
अच्छा।
वो बताते हैं कि कैसे श्री रामचंद्र जी की संगति में रीच वानर भी पूजनीय हो गए।
हाँ।
और श्री कृष्ण के साथ रहकर साधारण गोप गोपियां भक्ति के शिखर पर पहुंच गईं।
सही बात है।
तो यहाँ सत्संग का मतलब सिर्फ अच्छी सोहबत नहीं है, इसमें सत यानी सत्य का भाव भी है। मतलब ये सिर्फ अच्छे लोगों के साथ बैठना नहीं, बल्कि सत्य की खोज में साथ होना है।
ये दिलचस्प है। और पूज्य गुरुदेव दो तरह के सत्संग की बात करते हैं, एक श्रेष्ठ मनुष्यों का
और दूसरा उत्तम पुस्तकों का।
हाँ, मतलब एक तरफ जीवित व्यक्ति हैं जिनसे तुरंत प्रेरणा मिलती है, और दूसरी तरफ हैं पुस्तकें जो समय और स्थान से परे हैं।
बिल्कुल।
इसका तो ये मतलब हुआ कि हम आज भी कबीर या शिवाजी का सत्संग कर सकते हैं। ये तो संगति की परिभाषा को बहुत व्यापक बना देता है।
आपने बिल्कुल सही समझा। पूज्य गुरुदेव का तो मानना ये ही था कि उनकी असली शक्ति उनके विचारों में है। और जो उनके विचारों को पढ़ ले, वही उनका सत्संग कर रहा है। जब हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उसका असर तुरंत और गहरा होता है। जैसे महात्मा गांधी का उदाहरण दिया गया है।
हाँ, कि उनके संपर्क में आके न जाने कितने लोग बदल गए
और सच्चे जनसेवक बन गए।
ठीक है, महात्मा गांधी के संपर्क में आकर लोग बदल गए, ये तो समझ आता है। लेकिन मेरा एक सवाल है।
पूछिए।
क्या ये प्रभाव स्थायी होता है? मतलब क्या संगति हटने के बाद व्यक्ति वापस अपने पुराने स्वभाव में नहीं लौट सकता?
ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसीलिए पूज्य गुरुदेव का जोर आत्मसंस्कार पर है।
आत्मसंस्कार।
हाँ, संगति एक चिंगारी की तरह है, लेकिन उस आग को जलाए रखने का काम व्यक्ति को स्वाध्याय से खुद करना होता है।
और पुस्तकों का सत्संग यही काम आता है।
अच्छा।
जब कोई महापुरुष भौतिक रूप से हमारे साथ ना हो, तो उनकी जीवनियां, उनके विचार, वो हमें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं।
और जब पुस्तकों की बात आती है तो पूज्य गुरुदेव विशेष रूप से महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने पर जोर देते हैं।
बिल्कुल।
मुझे हमेशा से पुस्तकों की ताकत पर यकीन रहा है, लेकिन ये सोचना कि महाराणा प्रताप और शिवाजी की जीवनियों ने लाखों लोगों में देश सेवा का भाव जगाया, ये जबरदस्त है।
हाँ, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं है,
ये तो सीधे सीधे भावना और प्रेरणा का संचार है।
एकदम सही।
और ये केवल वयस्कों के लिए नहीं है, चरित्र निर्माण में इसकी भूमिका तो बचपन से ही शुरू हो जाती है।
बच्चों वाली बात।
हाँ, और ये मुझे खास तौर पे जरूरी लगती है। हम इस बात पे बहुत ध्यान देते हैं कि बच्चा क्या खा रहा है, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो किन दोस्तों या किन विचारों के साथ वैचारिक खुराक ले रहा है।
सही बात है।
गलत संगति उससे असभ्य बना सकती है, तो अच्छी संगति उसे सुशील बनाती है।
तो उसका कुल मतलब क्या है? सार ये है कि अच्छी संगति, चाहे वो जीवित व्यक्तियों के माध्यम से मिले या महान विचारों वाली पुस्तकों से, वो चरित्र निर्माण और आत्म सुधार का सबसे शक्तिशाली साधन है। ये हमारे अंदर बदलाव की चिंगारी भी लगा सकती है और उस आग को जलाए भी रख सकती है।
और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है, जिसे हमें आज के संदर्भ में देखना होगा।
जैसे कि?
जैसे आज के डिजिटल युग में जब हमारी संगति अक्सर ऑनलाइन होती है, हम सोशल मीडिया पर किसे फॉलो करते हैं, कौन से वीडियो देखते हैं या कौन से पॉडकास्ट सुनते हैं, तो ऐसे में कोई अपने चरित्र को सही दिशा देने के लिए एक आधुनिक और स्वस्थ सत्संग का निर्माण कैसे कर सकता?
नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल को जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि क्या हम जिस माहौल में रहते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, वो वाकई हमें बना या बिगाड़ सकते हैं? और अगर हाँ, तो क्या हम अपनी तरक्की के लिए अपने माहौल को, मतलब कॉन्शियसली डिज़ाइन कर सकते हैं? इन सवालों को समझने के लिए हम पूज्य गुरुदेव के लिखे एक महत्वपूर्ण अध्याय महापुरुषों का चरित्र चिंतन भी कल्याणकारी होता है को अपना गाइड बनाएंगे। इसमें पूज्य गुरुदेव एक बहुत बड़ा दावा करते हैं कि उन्नति के जितने भी साधन हैं, उनमें सत्संग यानी अच्छी संगति सबसे ज्यादा असरदार और आसान है। चलिए इस दावे को जरा अनपैक करते हैं।
जी, ये दावा वाकई बहुत बड़ा है और इसे समझाने के लिए पूज्य गुरुदेव एक कमाल की एनालॉजी देते हैं, पारस पत्थर की।
पारस पत्थर?
हाँ, जैसे पारस पत्थर लोहे को छूकर सोना बना देता है, वैसे ही सत्संग एक साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकता है। और यहाँ बात सिर्फ अच्छी आदतें सीखने की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की, एक भीतरी बदलाव की, जो किसी के कोर नेचर को भी बदल सकता है।
वाह, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असलियत में ऐसा होता है क्या? पूज्य गुरुदेव कुछ ऐतिहासिक और मिथोलॉजिकल उदाहरण देते हैं, जैसे कि भगवान रामचंद्र जी के सत्संग से रीच वानर भी पवित्र हो गए थे। अब आज के दौर में सुनने वाले के लिए ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो अगर हम इसके सिंबॉलिक मीनिंग को देखें तो इसका असल मतलब क्या है?
ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका शाब्दिक अर्थ लेना जरूरी भी नहीं है। इसका जो गहरा प्रतीकवाद है वो ये है कि जब आप किसी बहुत ऊंची चेतना, एक एनलाइटेंड बीइंग के संपर्क में आते हैं, तो उनकी ऊर्जा का प्रभाव वो हर स्तर पे पड़ता है।
हर स्तर पर?
जी, रीच वानर का पवित्र होना ये दिखाता है कि उस ऊर्जा के दायरे में जो भी आता है, चाहे उसकी चेतना का स्तर कितना भी, मतलब अविकसित क्यों न हो, उसमें एक पॉजिटिव शिफ्ट आता है। वो वृत्तियां जो पशु समान है, वो भी शांत और सात्विक होने लगती हैं।
अच्छा, तो ये एक तरह से रेडिएशन जैसा है, लेकिन अच्छी ऊर्जा का।
हाँ, आप कह सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए जो ज्यादा रिलेटेबल है, कृष्ण जी का। उनके साथ रहने वाले गांव के साधारण गोप गोपियां, जिन्हें कोई शायद ज्यादा महत्व नहीं देता, वो भक्त शिरोमणि बन गए। ऐसा क्या था कृष्ण की संगति में? वो कोई लेक्चर तो नहीं देते थे, लेकिन उनका होना, उनका व्यवहार, उनकी ऊर्जा, वो लोगों के दिलों में भक्ति और प्रेम को जगा देती थी। सत्संग का असली जादू यही है, ये सिखाता कम है, बदलता ज्यादा है।
और क्या हमारे पास कोई आधुनिक नॉन मिथोलॉजिकल उदाहरण है जिसे हम इतिहास में देख सकें? बिल्कुल।
सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी। उनके संपर्क में आने वाले न जाने कितने विलासी और फैशन परस्त लोग, जो अपनी कंफर्टेबल जिंदगी में मस्त थे,
हाँ,
वो सब कुछ छोड़कर सच्चे जनसेवक बन गए। बड़े बड़े बैरिस्टर, खादी पहनने लगे, अंग्रेजी तौर तरीके छोड़ दिए और देश की सेवा में लग गए। गांधी जी की संगति में कुछ ऐसा था जो लोगों के जीवन का मकसद ही बदल देता था। तो ये दिखाता है कि सत्संग सिर्फ पापियों को नहीं सुधारता, ये अच्छे लोगों को महान भी बनाता है।
गांधी जी का उदाहरण तो आज के दौर के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन वो भी अब हमारे बीच नहीं है।
हाँ।
राम और कृष्ण भी नहीं है।
हाँ।
तो सवाल वही है, ऐसे महापुरुषों की गैर मौजूदगी में आज का आम इंसान प्रेरणा कहाँ से ले, सत्संग का रास्ता क्या है?
और यहीं पर वो प्रैक्टिकल सवाल उठता है जिसका जवाब पूज्य गुरुदेव देते हैं। वो कहते हैं कि सत्संग के दो मुख्य रूप हैं, पहला श्रेष्ठ मनुष्यों का संग जो अब दुर्लभ हो सकता है, और दूसरा उत्तम पुस्तकों का संग।
उत्तम पुस्तकों का संग
जी, जिसे उन्होंने स्वाध्याय कहा है, और ये हर किसी के लिए उपलब्ध है।
ठीक है, तो एक है जिंदा इंसानों का साथ और दूसरा है विचारों का साथ जो हमें पुस्तकों से मिलता है। पूज्य गुरुदेव इन दोनों में से किसे ज्यादा प्रभावी मानते हैं, मतलब कोई फर्क है दोनों में?
वो एक बहुत सूक्ष्म अंतर बताते हैं। वो कहते हैं कि संत जनों या महापुरुषों का प्रभाव जल्दी और गहरा पड़ता है।
अच्छा।
ऐसा इसलिए क्योंकि वो जीवंत हैं, प्रत्यक्ष है। जब आप किसी के साथ होते हैं तो आप सिर्फ उनके शब्द नहीं सुनते, आप उनके उठने बैठने का ढंग, उनकी शांति, उनकी ऊर्जा, मुश्किल हालात में उनका रिएक्शन, ये सब कुछ एब्जॉर्ब करते हैं। वो एक 360 डिग्री लर्निंग एक्सपीरियंस होता है।
लेकिन मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है। गुरुदेव कहते हैं कि संतों का असर ज्यादा तेजी से होता है, पर आज के जमाने में जहां हम दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों को किताबों, इंटरव्यूज या पॉडकास्ट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, क्या ये बात अब भी उतनी सच है? क्या स्वाध्याय आज के दौर में ज्यादा पावरफुल नहीं हो गया है?
ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। आज के डिजिटल युग में स्वाध्याय की शक्ति कई गुना बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने से ज्ञान हासिल कर सकते हैं।
विचारों की एक्सेसिबिलिटी तो ऑल टाइम हाई पर है।
वही तो, लेकिन पूज्य गुरुदेव जिस प्रभाव की बात कर रहे हैं वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं है, वो एक एनर्जेटिक ट्रांसफर है। एक शांत व्यक्ति के पास बैठने से जो शांति महसूस होती है वो शांति पर एक पुस्तक पढ़ने से नहीं मिल सकती।
सही बात है।
दोनों की अपनी अपनी जगह है। स्वाध्याय आपके मन और बुद्धि को खुराक देता है, जबकि एक महापुरुष का संग वो सीधे आपकी आत्मा पर असर करता है।
मुझे किताबों वाला पॉइंट समझ आता है, लेकिन क्या सिर्फ किसी की जीवनी पढ़ लेने से असल में कोई बड़ा बदलाव आता है? मतलब प्रेरणा मिलना एक बात है, पर अपनी सालों की आदतों को बदलना दूसरी। क्या गुरुदेव इस गैप के बारे में कुछ कहते हैं? जीवन चरित्रों पर।
जी, क्योंकि जीवनियां हमें प्रेरणा का सीधा प्रैक्टिकल रोड मैप देती हैं। जब हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि सच बोलना चाहिए तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने सच के लिए अपना राजपाट, परिवार, सब कुछ दांव पर लगा दिया, तो वो विचार हमारे अंदर जिंदा हो जाता है।
हाँ, एक कहानी बन जाता है।
बिल्कुल। हम देखते हैं कि उन्होंने किन संघर्षों का सामना किया, कैसे चुनौतियों पर विजय पाई, ये हमें दिखाता है कि ये संभव है।
मतलब कहानियां हमें सिर्फ क्या करना है नहीं बताती, बल्कि कैसे करना है इसका एक खाका भी देती हैं।
बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण का उदाहरण देते हैं।
हाँ।
कहते हैं राम का आदर्श जीवन पढ़कर न जाने कितने लोगों ने गलत रास्ता छोड़ दिया।
क्यों?
क्योंकि राम का चरित्र एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजा का जीता जागता ब्लूप्रिंट है।
वेरी ट्रू।
इसी तरह वो कहते हैं कि महाराणा प्रताप और महाराज शिवाजी की जीवनियों ने लाखों नौजवानों को देश सेवा का पाठ पढ़ाया।
दैट्स ट्रू।
ये जीवनियां सिर्फ इतिहास नहीं है, ये चरित्र निर्माण के टूल्स हैं।
ये बहुत पावरफुल आइडिया है, पर ये सब तो बड़े होने के बाद की बातें हैं, जब हम खुद चुन सकते हैं कि क्या पढ़ना है। लेकिन चरित्र की नींव तो वो तो बचपन में पड़ती है, क्या सत्संग का वहां भी कोई रोल है?
बल्कि सबसे बड़ा रोल वही है। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट का मामला नहीं है, ये चरित्र निर्माण की नींव है, और इसकी शुरुआत जन्म से ही हो जाती है। यहीं पर संगति का महत्व सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा खतरनाक भी।
खतरनाक? खतरनाक कैसे?
पूज्य गुरुदेव एक बहुत ही व्यवहारिक और चेतावनी भरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जिन बच्चों का ज्यादातर समय कम पढ़े लिखे नौकरों या बुरी आदतों वाले पड़ोसियों के बीच बीतता है, वो अक्सर असभ्य और अशिष्ट बन जाते हैं। वो गालियां देना, झूठ बोलना, बुरी आदतें बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और कभी कभी ये आदतें इतनी गहरी हो जाती हैं कि उनका पूरा जीवन ही बिगड़ जाता है।
लेकिन क्या ये सोच थोड़ी डिटर्मिनिस्टिक नहीं है? मतलब क्या ये मान लेना सही है कि माहौल ही सब कुछ है, कई महान लोग तो बहुत मुश्किल और खराब माहौल से निकलकर भी कामयाब हुए हैं। क्या इंसान की अपनी इच्छा शक्ति, उसकी विल पावर का कोई रोल नहीं है?
आपका सवाल बहुत जरूरी है और ये हमें इस विचार को और गहराई से समझने में मदद करता है। देखिए, पूज्य गुरुदेव ये नहीं कह रहे हैं कि इंसान अपनी इच्छा शक्ति से माहौल को मात नहीं दे सकता। बिल्कुल दे सकता है।
हाँ।
इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये धारा के खिलाफ तैरने जैसा है जिसमें असाधारण बल लगता है।
अच्छा, जबकि अच्छा माहौल धारा के साथ तैरने जैसा है जो आपकी मंजिल को आसान बना देता है। और एक बच्चे के लिए जिसकी इच्छा शक्ति अभी विकसित नहीं हुई है, माहौल का प्रभाव लगभग निर्णायक हो सकता है।
मतलब ये प्रोबेबिलिटीज का खेल है।
अच्छा माहौल सफलता की ओर और अच्छे चरित्र की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है।
बिल्कुल, बच्चे स्पंज की तरह होते हैं। वे अपने आसपास के माहौल से सब कुछ सोख लेते हैं, भाषा, आदतें, मूल्य, सब कुछ। वो सही और गलत में भेद नहीं कर पाते, इसीलिए उनके आसपास का वातावरण यानी उनका पहला सत्संग उनके चरित्र की पहली ईंट रखता है। इसके विपरीत, जो परिवार अपने बच्चों की अच्छी तरह देखरेख करते हैं, उन्हें अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने देते हैं और सबसे जरूरी, घर में खुद भी तहजीब से और प्रेम से रहते हैं, उनके बच्चे अपने आप वेल मैनर्ड और सुशील बनते हैं। उनकी बातचीत से सुनने वाले को अच्छा लगता है।
तो इसका मतलब यह है कि सत्संग की जरूरत सिर्फ ज्ञानियों या साधकों को नहीं बल्कि हर माता पिता को है, ताकि वे अपने बच्चों के लिए एक सही माहौल बना सकें। ये एक सक्रिय जिम्मेदारी है।
एकदम, सत्संग कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है, ये एक एक्टिव चॉइस है। आपको अच्छी संगति खोजनी पड़ती है, उसे बनाना पड़ता है, उसे मेंटेन करना पड़ता है, और बुरी संगति से बचने के लिए भी सचेत प्रयास की जरूरत होती है। पूज्य गुरुदेव का संदेश बहुत साफ है। आप जो बनते हैं वो काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ अपना समय बिताते हैं और किन विचारों को अपने मन में जगह देते हैं।
तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार अगर मैं कहूं तो ये है कि सत्संग यानी अच्छी संगति हमारे आत्म सुधार और चरित्र निर्माण का सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है। ये पारस पत्थर की तरह है जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है।
हाँ, और ये संगति दो तरह की है, जिंदा इंसानों की और महान विचारों की जो हमें पुस्तकों से मिलती हैं। एक का असर तेज और समग्र होता है तो दूसरे की पहुंच आज के युग में असीम है।
दोनों ही जरूरी हैं।
जी,
हमने ये भी समझा कि इसका असर बचपन से ही शुरू हो जाता है और एक सही माहौल देना शायद माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल लाइफ स्किल है।
और निष्कर्ष ये है कि हमें सचेत रूप से कॉन्शियसली अपने संघ का चुनाव करना चाहिए। हमें रुककर सोचना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं, हम कौन सी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, हम किन विचारों को अपने मन पर हावी होने दे रहे हैं।
सही बात है,
क्योंकि यही छोटे छोटे चुनाव अंत में हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। ये एक छोटी सी आदत लग सकती है लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है।
और जाते जाते एक विचार, पूज्य गुरुदेव ने लोगों और पुस्तकों के सत्संग की बात की थी। ये बातें उस युग की हैं जब माध्यम सीमित थे। आज के डिजिटल युग में जहां हमारा अधिकांश समय सोशल मीडिया, यूट्यूब और ऑनलाइन कंटेंट के साथ बीतता है, वहां सत्संग का क्या रूप है? क्या हमारे डिजिटल संगति, हमारा फीड, हमारे सब्सक्रिप्शंस भी हमारे चरित्र को उसी तरह बनाया बिगाड़ सकते हैं? इस पर विचार करना शायद आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है।